ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में कल शाम 7 बजे तक लगभग 66.58% मतदान हुआ। उधमपुर जिले में सबसे अधिक 72.91% वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा के चुनाव में तीसरे चरण के मतदाताओं को रिकॉर्ड मतदान के लिए हार्दिक बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिन्हा ने कहा कि तीनों चरणों में मतदाताओं के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भारी उत्साह, जम्मू कश्मीर में जीवंत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में लोगों के विश्वास का प्रमाण है। इधर हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल पलवल जिले में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश पर राज किया, लेकिन लोगों को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, पक्के घर सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। उधर सोनीपत के गुहाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान आज महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर संपन्न होगा। इस अभियान में देशभर की राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से शुरू किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से आज सुबह 9 बजे से स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में 155वीं गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह आयोजन स्वच्छता के लिए सबसे अहम जन आंदोलनों में से एक स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी स्वच्छता और सफाई से संबंधित 9,600 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारीबाग में 79,156 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा। बाद में श्री मोदी 20 सितंबर को शुरू हुए परिवर्तन समारोह के समापन पर हजारीबाग के गांधी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हिजबुल्ला और हमास के शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने के जवाब में ईरान ने मंगलवार को इसराइल पर कम से कम 180 मिसाइलें दागी, जिससे लोगों को बचने के लिए सुरक्षा आश्रयों की ओर भागना पड़ा। क्षेत्र में चौतरफा युद्ध की आशंका बढ़ गई है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इसराइल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने उनसे सावधानी बरतने, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसराइल के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज कोलकाता में सियालदह रेलवे स्टेशन से पूर्वी रेलवे के सियालदह उपनगरीय मुख्य मार्ग पर 12 कोच वाली ईएमयू लोकल ट्रेन सेवा का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। वे अजीमगंज, कासिम बाजार और कृष्णानगर अजीमगंज मार्गों पर ट्रेन सेवाओं का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। श्री वैष्णव कोलकाता के गार्डन रीच में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल होंगे और गांधी भवन में पुष्पांजलि समारोह में भी भाग लेंगे। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ से अग्रिम के रूप में 468 करोड़ रूपये जारी किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। भारत ने कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 मैच की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए 95 रन का लक्ष्य मिला था। मेजबान टीम ने ये लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश की दूसरी पारी 146 रन पर ही सिमट गई। बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 9 विकेट पर 285 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।